उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूँ।
श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नागालैंड से और आज हम नागालैंड की विविध जनजातियों की कड़ी में जानेंगे फोम जनजाति के बारे में। हमें कोहिमा से हमारी संवाददाता मैरी ने ये खास रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने फोम जनजाति के रीति रिवाजों, विरासत और परंपराओं की विस्तार से चर्चा की है। तो आइए आप भी नागालैंड की इस विविध जनजाति के रंगों में डूब जाइए और ये खास रिपोर्ट सुनिए।
नागालैंड की धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच जहां सुबह की पहली किरण बादलों को चीरकर धरती को छूती है, वहीं बसता है एक जीवंत और परंपराओं से समृद्ध समुदाय फोम नागा जनजाति। नागालैंड की प्रमुख नागा जनजातियों में गिने जाने वाले फोम लोग मुख्य रूप से लोंगलेंग जिले में निवास करते हैं। ये क्षेत्र अपनी ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और बादलों से घिरे वातावरण के कारण लैंड ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये इलाका फोम जनजाति की जीवन शैली, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित करता है। जनजाति बड़े नागा समुदाय का हिस्सा है जिसकी सांस्कृतिक पहचान मौखिक परंपराओं, लोक कथाओं और सामुदायिक जीवन पर आधारित है। फोम लोगों का इतिहास लंबे समय तक लिखित रूप में दर्ज नहीं हुआ बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों और गीतों के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। नाम को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार ये शब्द भूमला से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ बादलों की महिला या बादलों से जुड़ी पूर्वज माना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में भूमला को फोम समुदाय की एक पौराणिक पूर्वज के रूप में भी याद किया जाता है। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नाम औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलित हुआ जब इस क्षेत्र में बादलों से ढके वातावरण के कारण बाहरी लोगों ने इस समुदाय को ऐसे नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। फोम लोग फोम भाषा बोलते हैं जो साइनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। ये भाषा उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांव में आज भी दैनिक जीवन में फोम भाषा का उपयोग होता है जबकि शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ रहा है। नागामीज भी संपर्क भाषा के रूप में बोली जाती है। लोकगीत, पारंपरिक कथाएं और सामाजिक संदेश अभी भी फोम भाषा में ही सुनाए जाते हैं जिससे उनकी सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है। पारंपरिक रूप से फोम जनजाति कृषि पर निर्भर रही। ये झूम खेती या स्थानांतरित खेती करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों की पारंपरिक कृषि पद्धति है। इस पद्धति में जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ सालों तक खेती की जाती है और फिर भूमि को आराम देने के लिए दूसरी जगह खेती की जाती है। धान, मक्का, बाजरा, दालें, कद्दू, मिर्च और कई स्थानीय सब्जियां इस खेती में उगाई जाती हैं। खेती के साथ साथ वन संसाधन भी इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। जंगली फल, औषधीय पौधे, बांस और लकड़ी का उपयोग भोजन, घर और औजार बनाने में किया जाता रहा है। आज भी कई गांवों में खेती सामूहिक सहयोग से होती है, जिसमें पूरा समुदाय एक दूसरे की मदद करता है। फोम जनजाति की पहचान उनके हस्तशिल्प से भी जुड़ी हुई है। बांस और लकड़ी से बने टोकरे, घरेलू सामान और पारंपरिक उपकरण इनकी कला का उदाहरण है। मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा भी यहाँ प्रचलित रही है। फोम महिलाएं बुनाई में विशेष रूप से दक्ष मानी जाती हैं। पारंपरिक करघों पर वो रंग बिरंगे शॉल और कपड़े तैयार करती हैं। इन शॉल के रंग और डिजाइन सिर्फ सजावट नहीं होते, बल्कि इनमें सांस्कृतिक अर्थ भी छिपे होते हैं। कुछ पैटर्न वीरता, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक पहचान का संकेत देते हैं। आज भी त्योहारों और विशेष अवसरों पर इन पारंपरिक वस्त्रों का विशेष महत्व बना हुआ है। फोम समाज में सामुदायिक जीवन का केंद्र मोरुंग रहा है। मोरुंग पारंपरिक युवा छात्रावास होता था, जहां युवाओं को सामाजिक नियम, परंपराएं, शिकार के तरीके, खेती के कौशल और सामुदायिक जिम्मेदारियां सिखाई जाती थी। ये जगह केवल रहने के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रशिक्षण का केंद्र भी था। यहाँ लोकगीत, नृत्य और युद्ध कौशल भी सिखाए जाते थे। हालांकि आधुनिक शिक्षा और बदलती जीवन शैली के कारण मोरुंग की भूमिका कम हुई है, लेकिन ये अब भी फोम संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। फोम जनजाति के त्योहार उनकी सांस्कृतिक पहचान का सबसे जीवंत हिस्सा हैं। इनमें सबसे प्रमुख त्योहार मोन्यू है, जो हर साल अप्रैल के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। ये त्योहार सर्दियों के अंत और नए कृषि चक्र की शुरुआत का संकेत है। 6 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में पूरा गांव उत्साह से भर उठता है। लोग पारंपरिक भोजन तैयार करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और सामूहिक नृत्य गान में भाग लेते हैं। इस दौरान रिश्तों को मजबूत करने और पुराने मतभेद मिटाने की परंपरा भी रही है। मोन्यू त्योहार के दौरान पारंपरिक गीत और नृत्य विशेष आकर्षण होते हैं। युवा पारंपरिक पोशाक पहनकर समूहों में नृत्य करते हैं। ढोल और स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन पर गांव का माहौल जीवंत हो उठता है। इस समय समुदाय प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करता है और अच्छी फसल की कामना करता है। त्योहार सामूहिकता और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक बनकर सामने आता है। फोम समुदाय हर वर्ष 6 जून को फोम दिवस भी मनाता है। ये दिन 1952 में हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौते की याद दिलाता है, जिसने गांव के बीच चल रहे संघर्षों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समझौते के बाद समुदाय में एकता और सहयोग की भावना मजबूत हुई। आज इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल और सामूहिक आयोजन किए जाते हैं, जो शांति और भाईचारे का संदेश देते हैं। समय के साथ फोम जनजाति के जीवन में बदलाव आए हैं। शिक्षा के प्रसार से युवा नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। सरकारी सेवाओं, शिक्षा, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। सड़क, संचार और सुविधाओं के विकास से बाहरी दुनिया से संपर्क भी मजबूत हुआ है। इसके बावजूद फोम लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। आज अधिकांश फोम लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जो 20वीं सदी में मिशनरियों के आगमन के बाद धीरे धीरे फैला। चर्च अब सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। फिर भी पारंपरिक त्योहार, लोकगीत, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जीवित हैं। फोम जनजाति की संस्कृति, प्रकृति, सामूहिकता और परंपरा के मेल का सुंदर उदाहरण है। पहाड़ों से घिरे उनके गांव, लोक गीतों की मधुर धुन, रंग बिरंगे वस्त्र और सामूहिक जीवन की परंपरा इस समुदाय की पहचान को विशिष्ट बनाते हैं। बदलते समय में भी फोम जनजाति अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है और नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से मैरी की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
तो श्रोताओं, नागालैंड के बाद अब हम चलते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा में इन दिनों खास उत्सव का आयोजन हो रहा है। पूरा अगरतला शहर रौनक और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि इन दिनों त्रिपुरा में चल रहा है चैत्र मेला। 2026 का चैत्र मेला भी त्रिपुरा में एक नया उत्साह और उमंग लेकर आया है, और बहुत से आगंतुक इस मेले में उत्साहपूर्वक हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने इस चैत्र मेले के उत्साह की विस्तार से चर्चा की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं।
इस अप्रैल महीने में अगरतला शहर एक बार फिर रंगों, उत्साह और रौनक से भर गया है, क्योंकि चैत्र मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 2 अप्रैल से शुरू हुए और 14 अप्रैल तक चलने वाले चिल्ड्रेन पार्क मैदान में इस पारंपरिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला चैत्र महीने के समापन और बंगाली नववर्ष के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। चैत्र मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कारीगर, व्यापारी और बड़ी संख्या में लोग एक ही परिसर में एकत्र होते हैं। इस वर्ष मेले का आयोजन पहले की तुलना में बड़े स्तर पर किया गया है। ढके हुए स्टॉल, बेहतर रोशनी, साफ पेयजल की व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्राकृतिक चुनौतियों के बीच भी सभी को सुविधाजनक अनुभव मिल सके। इस व्यवस्था में आपदा मित्र के युवा स्वयंसेवक भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। एक स्वयंसेवक ने इस पहल का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी और गर्व व्यक्त किया।
ये जो प्राकृतिक दुर्योग डिजास्टर होता है ना, इसलिए हम लोग इधर जो मेले के अंदर आए हैं, हमारा युवा आपदा मित्र का टीम भी है और हम सिविल डिफेंस का टीम भी है। हम लोग एएमसी के अंडर से आया है इधर, अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई प्राकृतिक दुर्योग या कोई पेशेंट या हालत से खराब होगा तो उन लोग रेस्क्यू करके जल्दी से जल्दी भेजना है, इसलिए हम लोगों को इधर तैनात किया है।
हस्तशिल्प से लेकर कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं तक यहाँ आने वाले लोगों को किफायती दामों पर कई तरह के सामान मिल रहे हैं। स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के एक विक्रेता ने बताया कि शुरुआत में बिक्री थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मेले के अंतिम दिनों में कारोबार बेहतर होगा।
हम स्टील वाला है, एल्यूमिनियम वाला है, रोज जो सामान लगता है रन्ना करने के लिए किचन में वही सामान मिलता है, चल रहा है। लेकिन अभी तो 8-10 दिन बाकी है, अभी थोड़ा कम चल रहा है, हमने हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा किया।
रेडीमेड कपड़ों के कारोबार से जुड़ी एक युवती जो पिछले 3 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही है, उन्होंने चैत्र मेले में स्टॉल मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि इस तरह की व्यवस्थित तैयारियों से उनके कारोबार को अच्छा बढ़ावा मिलेगा।
मैं लॉन्ग पैंट बिकता हूँ, ये 2 आइटम है और स्टॉल है, मुझे 300
अच्छा ही चल रहा है। चैत्र मेला 2026 परंपरा, व्यापार और उत्सव का एक जीवंत संगम है, और अगरतला का चिल्ड्रन पार्क मैदान इस पूरे माहौल की रौनक को दर्शाता नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी।
तो अभी हमने चर्चा की नागालैंड की जनजाति और त्रिपुरा के कला उत्सव की, अब हम बात करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के विकास की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के विकास को नई गति देते हुए विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है और माना जा रहा है कि इन विद्युत परियोजनाओं के निवेश से अरुणाचल प्रदेश में आने वाले समय में जहां एक तरफ बिजली की भारी मांग को पूरा किया जा सकेगा, वहीं साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी विकास के ढांचे को भी इन परियोजनाओं के माध्यम से मजबूती मिलेगी। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की चर्चा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के मजबूत होते बुनियादी ढांचे की भी विस्तार से बात की है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के कामले, क्रादादी और कुरंग कुमे जिलों में कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी बिजली परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाना और क्षेत्र के विकास को गति देना है। इस परियोजना को पूरा करने की अनुमानित अवधि 96 महीने यानी लगभग 8 वर्ष रखी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अहम मंजूरी के बारे में मीडिया को बताया।
नॉर्थ ईस्ट में दो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1200 मेगावाट का है।
कमला जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट होगी। इसमें 210 मेगावाट की 8 इकाइयां और 40 मेगावाट की एक इकाई शामिल होगी। इस परियोजना से हर साल लगभग 6,870 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। इसका सीधा लाभ ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। राज्य में बढ़ती मांग के समय बिजली आपूर्ति संभालने में आसानी होगी। इसके अलावा ये परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी मदद करेगी जिससे अन्य राज्यों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण फायदा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण से भी जुड़ा है। जलाशय आधारित परियोजना होने के कारण पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे मानसून के दौरान अचानक बढ़ने वाले जल स्तर को संतुलित करने में योग मिल सकता है। कमला जल विद्युत परियोजना के साथ साथ राज्य में अन्य बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी विकसित की जा रही हैं। इनमें सुबनसिरी लोअर परियोजना 2000 मेगावाट और दिबांग मल्टीपर्पज परियोजना 2880 मेगावाट निर्माणाधीन है, जबकि एटालिन परियोजना 3097 मेगावाट प्रस्तावित है। ये सभी परियोजनाएं NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली उत्पादन में बड़ी वृद्धि होगी। कमला परियोजना को NHPC लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के बाढ़ नियंत्रण हिस्से के लिए 4,743.98 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देगी। इसके अलावा सड़क, पुल और ट्रांसमिशन लाइन जैसी आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए 1,340 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 750 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से राज्य को सीधे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी जिससे राज्य की अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 1% बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए निर्धारित की जाएगी। इस कोष का उपयोग परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। कमला परियोजना से कामले, क्रादादी और कुरुंग कुमे जिलों में आधारभूत ढांचे में बड़ा सुधार होगा। परियोजना के तहत लगभग 196 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। ये सड़कें केवल परियोजना के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए भी उपयोगी होंगी। इससे दूर दराज के गांवों को बेहतर संपर्क मिलेगा और परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी। परियोजना के तहत सामाजिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। अस्पताल, स्कूल, बाजार और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए परियोजना निधि से 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक जरूरतों की सुविधाएं उनके आसपास ही उपलब्ध हो सकेंगी। स्थानीय लोगों को इस परियोजना से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। निर्माण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। इसके अलावा परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR गतिविधियों के माध्यम से भी क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना 2000 मेगावाट क्षमता के साथ उन्नत चरण में है। इसमें से 750 मेगावाट क्षमता पहले ही शुरू की जा चुकी है। शेष क्षमता दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। इन सभी परियोजनाओं से राज्यों को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही परियोजना राजस्व के 1% के बराबर राशि स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में दी जाएगी, जिससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को निरंतर समर्थन मिलता रहेगा। उत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
श्रोताओं, सिक्किम के विकास में यहाँ की सेवोक रंगपो रेल परियोजना आने वाले समय में विकास की एक धुरी बनने जा रही है। विकास और पर्यटन के लिए ये रेल परियोजना एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। माना जा रहा है कि 2027 में ये परियोजना पूरी होगी। हाल ही में मीडिया के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक विशेष वार्ता में इसकी जानकारी दी। तो ये परियोजना क्या है और किस तरह से सिक्किम, जो सड़क मार्ग पर निर्भर एक राज्य है, वहाँ विकास की कैसे नई कहानी लिखने वाली है, इस बारे में हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने कहा है कि सिवोक रंगपो रेल परियोजना राज्य की संपर्क व्यवस्था को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उनके अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से सिक्किम में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये बात गंगटोक में पत्र सूचना कार्यालय शिलांग द्वारा आयोजित एक प्रेस भ्रमण कार्यक्रम के तहत सिक्किम आए मेघालय के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये रेलवे परियोजना सिक्किम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से पहली बार राज्य को देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार रेल संपर्क बेहतर होने से इस पहाड़ी राज्य तक यात्रा करना अधिक आसान हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिवोक रंगपो रेल लाइन का निर्माण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। इसमें से करीब 41.5 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल में और लगभग 3.5 किलोमीटर हिस्सा सिक्किम में स्थित है। कठिन पहाड़ी भूभाग के कारण इस परियोजना में 14 सुरंगों और 23 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद क्षेत्र में परिवहन और माल ढुलाई की व्यवस्था काफी बेहतर हो जाएगी। यात्रियों के साथ साथ सामान की आवाजाही भी अधिक सुगम होगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को ये भी बताया कि परियोजना का कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इसे वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से सिक्किम की लंबे समय से चली आ रही संपर्क संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि फिलहाल राज्य मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को भी दर्शाती है जिसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को तेज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दूर दराज और सीमावर्ती राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना प्राथमिकता रही है और इसके लिए सड़क, रेल तथा हवाई संपर्क से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सिवोक रंगपो रेल परियोजना सिक्किम की संपर्क व्यवस्था को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे राज्य में आर्थिक अवसरों के नए द्वार खुलेंगे, साथ ही पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती मिलेगी। हमारे सिक्किम संवाददाता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मनोज।
गली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक गली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक गली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक गली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।